نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم نماز نبی بک میں سے آج ہم جس چپٹر پر تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے یہ ہے اوقات نماز نمازوں کے وقت بڑا اہم ٹاپک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نمازوں کے اوقات کے بارے میں ہمیں کیا بات معلوم ہوئی پہلی چیز اس چپٹر سے جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے نمازوں کے وقت کن وقتوں میں اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے موضوع چکے ہیں میں تو میں پوری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے آپ نے فرمایا ان دو دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو یعنی ایک دن پہلے دن آپ نے ابتدائی وقتوں میں پڑھائی اگلے دن انتہائی وقتوں میں پڑھائی کہا ان دو وقتوں میں پڑھو کیا اب سنیے گا آپ بھی جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے بلال کو ظہر کی اذان دینے کا حکم دیا عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند سفید اور صاف تھا مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی یعنی پانچوں نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں پڑھایا دوسرے دن بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کر کے یعنی دیر کر کے اور عصر کی نماز پڑھی جب سورج بلند تھا اور اس اول وقت سے تاخیر کی جو اس کے لیے پہلے دن تھا مغرب کی نماز شفق یعنی سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی اور عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزرنے پر پڑھی فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی یعنی نمازوں کو ان کے آخری وقت میں پڑھایا اور فرمایا تمہاری نماز کے اوقات ان دو وقتوں کے درمیان ہیں جن کو تم نے دیکھا اور یہی وہ دو وقت ہے کہ جن پہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو نمازیں پڑھائی تھیں سیرت میں آپ دیکھیں گے اس کو کہ جب نماز فرض ہوئی تو اس کے اگلے ہی دن سے جبرائیل علیہ السلام دونوں دن آتے رہے پہلے دن آپ کو ابتدائی وقتوں پہ پڑھائیں اور دوسرے دن نماز کا جو انتہائی وقت ہے اس پہ پڑھائیں اور فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازوں کے وقت جو ہیں ان کے بیچ میں ہے ساری باتوں کو جمع کریں تو پتہ کیا چلا فجر کب ہوتی ہے جب بالکل ابھی دن جو ہے وہ بالکل ابھی کھلا بھی نہیں اندھیرا سا جیسے شروع ہوتا ہے صبح روشن کرنے سے پہلے کے وقت میں سرخی جب مطلب سرخی غائب ہوئی اور فجر کی نماز آپ نے جب صبح فجر کا وقت ہوا طلوع کا وقت اور دوسرے دن آپ کو کب پڑھائی جب صبح روشن ہو گئی یعنی سورج نکلنے سے پہلے کا وقت یہی ہے وقت بہترین کام کیا ہے وقت سے پہلے پڑھنا ابتدائی وقت میں پڑھنا بامر مجبوری آخری وقت تک پڑھی جا سکتی ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ شروع وقت ہو جائے تو نہ پڑھیں کہ ابھی ہماری نماز کا وقت نہیں ہوا یہ دونوں وقتوں کو میں اس طرح سے سمجھتی ہوں جیسے آپ کو کوئی بل ملتا ہے بجلی کا جمع کرانا ہے آپ کو آج ملا ڈیٹ پڑھتے ہیں آخری ڈیٹ کے اس میں ایک ہفتے بعد کی ہے آج سے لے کے ایک ہفتے کے اندر آپ بل جمع کرا سکتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ صرف آخری دن جا کے آپ لائن میں کھڑے ہوں گے پہلے کرا لیں گے تو بہتر ہے نا اسی طرح نماز کے بارے میں حکم کیا ہے کہ جب وقت آ جائے نا تو پھر آپ کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اذانیں سنتے رہتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں نہیں ابھی ہماری مسجد کا وقت نہیں ہوا ابھی ہماری نماز کا وقت نہیں ہوا یہ فرق دونوں میں یہی ہے ایک ابتدائی نماز اور ایک انتہائی اور اس وقت اثر پڑھتے ہیں جب بالکل دن جانے والا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ جو وقت ہیں ان کے بیچ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ظہر کی نماز کا میں ضرور شبہ دور کرنا چاہوں گی ہمارے ہاں ایک معروف بات ہوتی ہے کہ ظہر کی اذان ہوئی ہے بس اس کے ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد نماز کا وقت ختم ہو گیا اور ذرا تین سے چار بجتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اب نماز قضا ہو گئی ہے اور قضا بھی کیسی ہوئی ہے کہ اگلے دن ظہر کے ساتھ پڑھیں گے ایسا نہیں ہے دیکھیے پسندیدہ عمل تو یہ کہ ظہر کا وقت ہوا ہے تو پڑھ لیں لیکن ظہر سے لے کے عصر کی نماز تک جتنا وقت ہے وہ ظہر کا وقت ہے آپ اس کے بیچ میں پوری پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح عصر کی نماز شروع ہوئی پڑھیں سائے کا تعلق ہوتا ہے جب جسم کا سایہ برابر ہو پھر ایک ڈبل ہو پھر اس سے مطلب دگنا ہو جائے تو جب وقت شروع ہو جائے اس کے بعد ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور اس سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مغرب ظہر کی نماز تھوڑی دیر سے پڑھنی پسندیدہ ہے اسی طرح عشاء کی نماز بھی تھوڑی دیر سے پڑھنی پسندیدہ ہے अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत की सख्ती का या उनके मुश्किल में पड़ने का डर ना होता तो मैं ईशा की नमाज़ और लेट कर देता, यानी बिल्कुल सोने से पहले के वक्त में। फिर अगली चीज़ हमने इस चैप्टर में सीखी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें फजर की नमाज़ के लिए मस्जिद में जाती थीं और अपनी चादरों में लिपटी होती कि अंधेरे की वजह से कोई उनको पहचानता भी नहीं था। अगली बात हमने सीखी कि फजर की नमाज़ सुबह सूरज निकलने से पहले तक पढ़ी जा सकती है, लेकिन पसंदीदा अमल क्या है कि इब्तदाई हिस्से में पढ़ी जाए। अगली बात हमने इसमें सीखी कि अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई नमाज आखिरी वक्त में नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि आपका इंतकाल हुआ और हम अपने आप को ही देख लें, शर्मिंदगी है ना कि हम पढ़ते ही तब है जब आखिरी वक्त हो जाएगा, बस अब जान छुड़ानी है, अब पढ़ लें। सारी ज़िंदगी आपने कभी भी लेट नमाज नहीं पढ़ी, आप ये कह लें। अगली बात हमने देखी इसमें कि गर्मियों और सर्द मौसम में नमाज़े जोहर के वक्त में कुछ कमी होती है। जोहर में, गर्मियों में जोहर आपने थोड़ी देर से पढ़ाई और सर्दियों में वक्त पे पढ़ाई। आपने फरमाया कि जब गर्मी सख्त हो तो नमाज़े जोहर ठंडे वक्त पर पढ़ो, और ये रिवायत कितनी खूबसूरत है ना कि एक मर्तबा गर्मी में हज़रत बिलाल ने जोहर की अज़ान देनी चाही तो आपने फरमाया ठंडा हो जाने दो, ठहर जाओ, गर्मी की शिद्दत जहन्नुम के जोश से है, गर्मी की शिद्दत में इस वक्त तक ठहरो कि टीलों के साए नज़र आने लगे। अगली चीज़ हमने इस हिस्से में सीखी कि ख़ास तौर पे असर की नमाज़ बहुत जल्दी पढ़ लेनी चाहिए। अगली बात इसमें हमने देखी जुमे की नमाज़ का वक्त, जुमा कब होता, जब सूरज ढल जाता। फिर अगली बात हमने इसमें सीखी कि जुमे की नमाज़ सर्दियों में अल्लाह के नबी जल्द पढ़ते थे और गर्मी के मौसम में देर से पढ़ते थे। ये वक्त की बात है, इस पे आगे जाके इंशाल्लाह मसाइल अगले एक पूरे टॉपिक में आएंगे। अगली बात हमने इसमें सीखी कि सूरज की नमाज़ पढ़ने के बाद इतना वक्त बच जाता था कि जिसमें कोई ऊँट को ज़िबह करे, फिर उसके गोश्त को पकाए और खा ले, और उस दौर में कोई प्रेशर कुकर्स नहीं थे, यानी असर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद इतना वक्त ना हो कि मग़रिब हो जाए, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ असर की नमाज़ लेट पढ़ी जाती है। फिर अगली बात हमने सीखी कि मुनाफिक असर की नमाज़ के लिए कैसे कि वो सूरज के ज़र्द होने का इंतज़ार करता है, यहाँ तक कि जब वो जर्द हो जाए और शैतान के दो सींगों के दरमियान हो जाए तो वो नमाज के लिए खड़ा होता है और चार ठोंगे मारता है, और इसमें अल्लाह का जिक्र कम करता है। ज़ाहिर जब नमाज को देर हो रही होगी तो फिर जिक्र कहाँ होगा, फिर तो मुख्तसर सी बात करके ही इंसान आगे चलेगा। फिर इसी तरह मग़रिब की नमाज़ के लिए हमने सीखा कि सूरज ग़ुरूब होते ही अल्लाह के नबी मग़रिब की नमाज़ अदा कर लेते थे, और ईशा की नमाज़ पसंदीदा ये है कि देर से पढ़ी जाए। अगली बात हमने सीखी कि अल्लाह के नबी ये पसंद नहीं करते थे कि ईशा की नमाज़ से पहले सोया जाए और ईशा की नमाज़ के बाद बातें की जाएं। हमारी सारी पार्टियां ईशा के बाद शुरू होती हैं और आधी रात तक। अगली चीज़ हमने सीखी कि अगर कभी हाकिम ही देर से पढ़ाएं तो क्या किया जाए, ये मसला अहम था, यानी जो मस्जिदों के इमाम हैं अगर वो देर से पढ़ाएं तो क्या किया जाए। तो आपने फरमाया कि तुम अपने वक्त पर नमाज को पढ़ लो, घर पे पढ़ लो, फिर उसके बाद जमात के साथ जाके दोबारा पढ़ लो तो एक नमाज तुम्हारे लिए नफिल हो जाएगी। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको नमाज का गम होता है, वो वक्त पे फिर पढ़ लेते हैं, फिर बाद में मस्जिद में वक्त हुआ फिर वहाँ जाके भी पढ़ी, ये नहीं कि फिर मस्जिद की छोड़ दो, झगड़े शुरू कर दो, वहाँ जाके भी पढ़ लो, एक को अल्लाह ताला नफिल कर देगा। और अगली बात हमें हमें इस चैप्टर से पता चली कि अल्लाह के नबी ने इस बात की खबर दे दी थी कि मेरे बाद ऐसे इमाम पैदा होंगे जिनको बास चीज़ें वक्त पर नमाज़ पढ़ने से रोकेंगी, यहाँ तक कि इसका वक्त जाता रहेगा, बस नमाज वक्त पर पढ़ो अगरचे तन्हा पढ़नी पड़े। एक शख्स बोला अल्लाह के नबी मैं इनके साथ भी नमाज़ पढ़ूँ, तो आपने फरमाया कि हाँ, यानी इसका हुक्म समझ में आ गया कि अगर किसी जगह है ही ऐसी मस्जिद जो बड़ी देर से पढ़ते हैं तो फिर क्या करें, आप अपने वक्त पे पढ़ लें घर में और उसके बाद उनके साथ दोबारा जाके पढ़ें। अगली चीज़ हमने इस हिस्से में सीखी और वो क्या है कि सुबह फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद नफिल नहीं पढ़ने चाहिए। क्यों? इसलिए कि इन वक्तों में शैतान बिल्कुल सूरज के सामने खड़ा हो जाता है, यानी शैतान, सूरज जो है वो शैतान के दोनों सींगों के दरमियान होता है। ऐसे वक्त में जब हम सजदा करते हैं ना, तो वो असल में शैतान को सजदा हो जाता है। और ये वो वक्त है जब मुशरिक कौम में सूरज को सजदे के लिए ऐसे वक्तों में नमाज पढ़ती थी, यानी सूरज की तरफ सजदा करते हैं और उससे फिर शैतान को भी सजदा होने का एक इहतमाल होता है। फिर अगली चीज़ हमने इस हिस्से में सीखी और वो क्या है कि असर की नमाज के बाद जो कोई सुन्नत पढ़ी जा सकती है कि नहीं, नहीं पढ़ी जा सकती, गो कि इसमें इख्तलाफ है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ी जा सकती है उसके बाद, लेकिन नफिल नहीं पढ़ी जा सकती। इसी तरह अगली बात हमने इस हिस्से से जो सीखी वो क्या है कि जिसकी कोई नमाज रह जाए, फौत शुदा नमाजें, जब वो भूल जाए या सो जाए, तो इसका कफ़ारा क्या है कि जिस वक्त याद आए उससे उस नमाज को पढ़ ले। नमाज के यानी पहली पिछली छुटी हुई नमाजों को पढ़ने की जो बात है, उसको हमारे यहाँ एक मारूफ टर्म दी जाती है, कज़ाए उम्री। और कज़ाए उम्री का मसला जो है वो इस तरह से पेश किया जाता है कि पिछली छुटी हुई नमाजों को काउंट करो और गिन गिन के अदा करो, और बाज़ दफ़ा फिर इंसान पिछली ज़िंदगी की नमाजों को जमा करते हैं। तो इस बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने रख देती हूँ, इसी चैप्टर में भी कुछ बातें हैं, लेकिन हुक्म यह है कि नमाज जो है, आप देखिए कि बंदे मोमिन की अल्लाह से कुर्ब और अल्लाह ताला के साथ कुर्ब और उससे ताल्लुक़ का ज़रिया बनती है। आप पिछले 10 साल से इस कुर्ब को हासिल नहीं कर सके, कभी करते थे कभी नहीं करते, अब वो वक्त गुजर गया, आपको याद ही नहीं, कभी पढ़ी थी कभी नहीं, किसी दिन दो पढ़ी किसी दिन चार पढ़ी, वो जो उसका मकसद हासिल होना था ना अल्लाह का कुर्ब, वो तो ख़त्म हो गया ना। अब रह गया मसला कि क्या फिर उन नमाजों को भी अदा करें कि ना करें। तो इसके बारे में इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला फरमाते हैं, एक शख्स कुफर से इस्लाम की तरफ तौबा करता है ना, तो उसकी तौबा उसके लिए रहमत बन जाती है। कैसे? पिछली नमाजें माफ़ हो गई। किसी काफिर को हम ये तो नहीं कहते कि आज 25 साल की उम्र में नमाज मुसलमान हो रहे हो, तो 10 से लेके 25 के 15 साल की नमाजें तुम अदा करो, कोई भी नहीं कहता ना, माफ़ी है, इस तौबा जो है गुनाहों को माफ़ करती है। तो कहते हैं कि जब एक काफिर के लिए तौबा रहमत बन गई, सोचने की बात है, तौबा रहमत बन गई कि उसके 15 साल की नमाजें माफ़ हो गई, तो जब एक मुसलमान तौबा करे तो उसकी तौबा उसके लिए जहमत क्यों बन जाए? तो लिहाजा एक ये दलील। दूसरी दलील पीरियड्स पे, एक औरत की जब पीरियड्स में नमाज़ें छूटती हैं तो उसको दोबारा अदा नहीं किया जाता, जबकि छुटे हुए रोज़ों को अदा किया जाता है। यही कानून इधर है, शौर बेशौरी में, गफलत में, नासमझी में, शिद्दत का एहसास ना होने की वजह से पिछली ज़िंदगी में अगर नमाज़ें छूट चुकी हैं, तो सच्चे दिल से पहली बात है तौबा करें, दूसरी बात है कसरत से सुन्नतों और नफलों पर पाबंदी करें, ज़्यादा से ज़्यादा नफिल पढ़ें, इंशाल्लाह इनसे अल्लाह ताला उस नमाज उस कमी को पूरा कर लेगा। और जो अगली बात है कि आइंदा फिर नमाज ना छोड़े, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पिछली माफ़ कर देगा। ये तो है उन नमाज़ों का मसला जो हमें याद ही नहीं, अब कभी पढ़ी कभी नहीं। दूसरी बात है, अब पता है शऊर में सो गए, आंख नहीं खुली, नीयत भी थी इरादा भी था, उठे रिग्रेट हुआ, फ़ौरन वजू करें, पूरी नमाज पढ़ें। आपने फरमाया कि सो जाए या भूल जाए तो फ़ौरन अदा करें, अब इसमें क्या है कि अगले दिन फजर के साथ पढ़ेंगे, किसको पता है आपने अगले दिन जिंदा रहना है, अगले दिन जोहर के साथ आज की जोहर पढ़ेंगे, नहीं फ़ौरन पढ़ें, फिर आप कोई गुंजाइश नहीं, जब छूटे फ़ौरन। अब ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप सोचें कि अच्छा पिछले हफ्ते पढ़ी थी और अभी तक नहीं पढ़ी, तो लिहाजा जिन नमाज़ों का तो डेफिनेट पता है कि हमने ये नहीं पढ़ी थी, उसको आप अदा करेंगे, किसी मुगालते की वजह से नहीं पढ़ी, किसी प्रॉब्लम से नहीं पढ़ी, लेकिन इसके अलावा जिन नमाज़ों का श्योर शॉट नहीं, उसमें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रहमत रखी है। इसमें एक बड़ा प्यारा वाक्या है जिसमें आपको देखेगा कि अल्लाह के नबी ने नमाज कैसे अदा करी थी। अबू कतादा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक सफ़र में फरमाया, आज रात कौन हमारी हिफाजत करेगा, ऐसा ना हो कि हम फजर की नमाज को ना जागें। हज़रत बिलाल ने कहा कि मैं ख्याल रखूंगा, फिर उन्होंने मशरिक की तरफ मुंह किया और कुछ देर बाद बिलाल भी गाफिल होकर सो रहे। सारे दिन के थके हुए थे, नींद आ गई, सो गए वो भी। जब सूरज गर्म हुआ तो जागे और उठ खड़े हुए, रसूलुल्लाह और सहाबा भी जागे। आपने फरमाया, ऊंट की नुकेल पकड़ कर चलो, क्योंकि ये शैतान की जगह है, यानी क्योंकि वहाँ सब गाफिल होकर सो गए थे ना। फिर नई जगह पहुंचकर आपने वजू किया, बिलाल ने अजान दी, आपने 2 रकतें पढ़ी, बाकी लोगों ने भी 2 सुन्नतें पढ़ी। फिर आपने फजर की नमाज पढ़ाई और फरमाया, जो शख्स भूल जाए उसे जब याद आए तो नमाज पढ़ ले। ठीक है, तो सुन्नतें भी पढ़ी जाएंगी और फर्ज भी पूरे पढ़े जाएंगे, और ये है फौरी उसी वक्त का उसके कजा की बात है। अगली चीज़ जो हमने इस हिस्से में सीखी, और वो क्या है कि सफ़र के दौरान अगर कोई शख्स कहीं पड़ाव डाले तो पहले अज़ान दे फिर नमाज़ पढ़े। और मैंने ये अमल करते हुए कई दफ़ा अपने मियाँ को देखा है कि इवन एयरपोर्ट्स पे या वीरानों पे जहाँ भी होते हैं ये पहले अज़ान देते हैं। हदीस बड़ी प्यारी है, आपको सुना देती हूँ। उकबा बिन आमिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारा परवरदिगार बकरियाँ चराने वाले से ताज्जुब करता है, यानी अल्लाह ताला ताजुब करते हैं उस बंदे पे जो पहाड़ की चोटी पर रहकर अजान देता है और नमाज पढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे को देखो जो नमाज के लिए अजान देता है और इकामत कहता है और मुझसे डरता है, मैंने इसको बख्श दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह के नाम बुलंद करने चाहिए। होटलों में आप रहते हैं, आप अपने कमरे में अजान दें, किसी के घर आप मेहमान गए हैं, अब वो उठ के जमात के लिए नहीं जा रहे तो आप जाके नीचे लाउंज में सुबह अजान दीजिए, क्योंकि मुसलमान जगहों से अल्लाह का नाम उठना चाहिए, और वहाँ से फिर ऐसी आवाज़ें होंगी तो इंशाल्लाह शैतान जो है वो दूर होंगे। तो इससे पता चला कि अगर कोई इंसान अकेला भी हो तो वो भी अजान देगा और फिर नियत करके खड़ा हो जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको जमात की सवाब देगा, क्योंकि अगर कोई दूसरा शख्स होता तो फिर वो बंदा खुद ब खुद उसके पीछे नमाज पढ़ता। तो इस तरह बाज़ दफ़ा बंदा एक अकेला नमाज पढ़ने के बावजूद भी अजर में जमात का अजर पा लेता है। फिर इसके बाद अगली चीज़ हमने देखी कि अगर कोई नमाज कज़ा होती है तो उसको कैसे दूसरी के साथ मिलाया जाए। मसलन आपकी जोहर चली गई, अब आप असर पढ़ रहे हैं, या मगरिब चली गई और ईशा पढ़ रहे हैं, तो पहले कौन सी पढ़ी जाएगी? तो तरतीब रखी जाएगी। किसी सख्त मजबूरी में अगर कोई नमाज चली जाए तो पहली नमाज पहले पढ़ी जाएगी और दूसरी नमाज उसके बाद, यानी जोहर पहले पढ़ी जाएगी, फिर असर पढ़ी जाएगी, फिर मगरिब और फिर ईशा, यही तरतीब जो है इसमें आती है। तो लिहाजा आप देखिए कि नमाज वक्त पे है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम नमाज़ों को उसके पूरे वक्त पे अदा कर सकें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। का सवाल अच्छा है कि हम मस्जिद गए, वहाँ जी मस्जिद में गए और वहाँ फ़र्ज़ पढ़ने का ही था, यानी सुन्नत का वक्त नहीं मिला, कोई हर्ज नहीं, आप उनके साथ फ़र्ज़ पढ़ें और फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आप अपने सुन्नत पढ़ें। ये अगला एक पूरा चैप्टर आ रहा है जमात की नमाज। बहुत सारी खराबियां हमारे अंदर, यकीन करें, मस्जिदों में जाने वाले, खुतबों में, जुमों में और मस्जिदों में हलके करने वालों को भी कई मसाइल जो वो मालूम नहीं होते। तो इंशाल्लाह उस पे हम मजीद बातें करें। 4 पढ़ लें, फिर 2 भी पढ़ लें, सुन्नतों में कोई इतनी सख्ती नहीं है, 4 भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं। जी पीछे से आप प्लीज़। यानी आप कब उठे? ठीक है, फिर उठे तो असर हो गई भी थी, तो बस फिर आप पहले जोहर के 4 फर्ज पढ़ें, फिर जोहर के 4 पढ़ लें, तरतीब में रखिए। खुदा ना खास ऐसा वक्त हो कि जोहर भी जा रही है, असर भी जा रही है, करीब है, फिर पहले असर के 4 पढ़ें फिर जोहर के, क्योंकि कम से कम एक तो आप पकड़ लेना। जी तुसी अल्लाह कोलो मदद मंगो ना कि अल्लाह ताला तानू वक्त ही उठा दे। हाँ जी, पहले तुसी फिर फर्ज पढ़ लो जल्दी, ते फिर सूरज जी तो निकल है, फिर सुनता पढ़ लो। हाँ जी फर्ज, हाँ फिर भी सुन्नतें पहले पढ़ लो, तो फिर जोहर फजर पढ़ लो। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। जी, ये कह रहे हैं अप टिल व्हाट टाइम वी कैन ऑफर फजर सलाद बिफोर सनराइज, बस सूरज निकलने से पहले पहले, ठीक है।